मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह
हम सभी तीन दिन से विशेष तपस्या कर रहे हैं और तपस्या का परिणाम जो अंदर होता है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है, तो आप सभी के चेहरे पर भी उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। आप भी अपना चेहरा एक बार शीशे में देख लेना ध्यान से कि पहले दिन आए थे तो चेहरा कैसा था और आज उसमें परिवर्तन कितना आया है। जितना हम तपस्या की गहराई में जाते हैं उतना हमारे आंतरिक एनर्जी बढ़ती जाती है और गुणों का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक हमारे पास में जमा होता जाता है। और जिसकी हमारे दैनिक जीवन में अति आवश्यकता होती है, और यही गुण और शक्तियों का स्टॉक कम होने के कारण आज का जो विषय है वाय वाय के बजाय वह वह कैसे करें, इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप सभी को तो शायद इतनी आवश्यकता भी नहीं रही होंगी, फिर भी विषय मिला है तो उसके ऊपर हम सभी चर्चा जरूर करेंगे। जब वाय बोलते हैं, यूं तो शाब्दिक अर्थ सरल है, क्यों? और जहां क्यों आता है वहां क्यों लग जाती है क्वेश्चंस की, क्यों, कैसे, कब, ये सारे, इतने सारी लंबी क्यों लग जाती है ना, जिसको हम कहें नेगेटिव संकल्प की क्यों, और वो इतनी फास्ट होती है ना, हम रोकना चाहें तब भी रुक नहीं पाती है, क्यों? वही बात आई, क्यों? क्योंकि शक्तियों का स्टॉक कम पड़ता है, और वो स्टॉक भरने के लिए आप सभी यहां बाबा के घर में आए हैं। देखिए गीत है, लेकिन दूसरी लाइन में ही उसका जवाब भी आ जाता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये गीत है ना, एक दूसरी लाइन में भी जवाब आ गया, क्या जो हुआ जैसा हुआ छोड़ो ये सब बातें। तो जब हमारे मन के अंदर क्यों ये उठता है ना, तो ये गीत भी याद कर सकते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ छोड़ो ये सब बातें, अपने पुरुषार्थ के ट्रैक पर आ जाओ, नहीं तो ट्रैक से उतर जाएंगे। वाय, इसके अंदर ही क्या समाया है, हाय, हाय शब्द दुख का है, हाय अफसोस का उद्गार है, हाय निराशा और उदासी लाती है। और जो व्यक्ति बार बार हर बात में वाय वाय करते हैं, उनके जीवन में बार बार उदासी आती है, निराशा आती है, और फिर वही धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेती है, जो हमको पुरुषार्थ नहीं करने देती है। तो इसलिए हमेशा कुछ भी होता है, कभी भी अपने भाग्य को हम उलहना ना दें, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं ना, कोसे नहीं अपने भाग्य को। कई लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी हो जाता है ना, कहते मेरे भाग्य में ऐसा है, बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं दिखाई देती है, ये मेरी तकदीर ही ऐसी है। लेकिन हम सभी जानते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में से हम बाबा के बच्चे बने हैं, किसकी सिलेक्शन है, भगवान की सिलेक्शन है ना हम, तो उसकी सिलेक्शन में कोई खामी हो सकती है? तो उसने हमको सेलेक्ट किया है, तो हमारे अंदर क्या क्या देखा होगा, तो वो हम खुद भी देखें। एक गीत है ना, कौन सा, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे अपना बना लिया और अपनी गोद में समा लिया। तो हम किसकी गोद में आए हैं? भगवान की गोद में हम आए हैं, हम भगवान के बच्चे बने हैं। तो हमारा भाग्य तो कितना श्रेष्ठ है जब हम ये संकल्प करेंगे तो वहां मेरा भाग्य वहां। तो अपने आप को एप्रिसिएट करना सीखे, दूसरे को तो बाद में, लेकिन पहले अपने आप को एप्रिसिएट करना सीखे। जितने बाबा ने सम्मान दिए हैं, आज का सम्मान क्या है? आज का सम्मान वाहरे मैं, ईगो वाला मैं नहीं, लेकिन इस संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य वाला मैं। तो अपने आप को सराहना सीखे, अपने आप को एप्रिसिएट करें। हम कई बार कार्य बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, दिल जान से सेवा करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में अंदर एक थोड़ी सी एक आश रह जाती है। क्या? कि मैंने इतने दिल से सेवा की, रात दिन एक करके सेवा की, मैंने भूख प्यास नहीं देखी इतनी सेवा की, फिर भी बहन जी ने मुझे एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि तुमने बहुत अच्छी सेवा की है। थोड़ा भी तो एप्रिसिएट करना चाहिए ना। ये क्या हो गया? अपेक्षाएं। इसलिए कभी कोई भी किसी का न अपमान करता है, न कभी किसी को कोई दुख देता है, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं हमको दुखी करती हैं। तो ऐसे समय हम क्या करें? प्रैक्टिकल करिए, अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे ऐसे सामने, और फिर इसको ऐसे अपने पीठ पर ले जाइए और वहां रे मैं, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरी तकदीर। बस अपने आप को एप्रिसिएट करें, किसी के इंतजार ना करें। ये तो हमारे हाथ में है ना, ये तो हम कर सकते हैं ना, हम क्यों किसी का इंतजार करें कि कोई हमको शाबाशी दे? तो रोज एक बार तो कम से कम अपने आप को इस तरह से ही, क्योंकि एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कहा स्पॉन्डलाइसिस होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा और मन के अंदर खुशी आ जाएगी। लेकिन अपने आप को एप्रिसिएट कब कर सकेंगे? जब जो भी आप पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ में सच्चाई होगी, सफाई होगी, सेवा में ईमानदारी होगी, वफादारी होगी, तब हम पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ कर सकते हैं। और जब हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं तो हमको आंतरिक खुशी बाबा की तरफ से मिलती है, किसी की तरफ से नहीं, लेकिन बाबा की तरफ से मिलती है। आप छोटा सा भी काम करेंगे ना तो भी आपको खुशी होगी। देखिए दुनिया में भी यदि कोई व्यक्ति पैदल चल करके जा रहा है और उसकी नजर में कोई सूरदास दिखाई देता है जिसको नेत्र नहीं है और उस सूरदास को रोड क्रॉस करनी है, आपके मन में ये श्रेष्ठ संकल्प आ जाता है कि मैं इसकी लकड़ी पकड़ करके इसको रोड क्रॉस करा दूं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन आप जब उसकी लकड़ी पकड़ेंगे ना तब भी आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और उसको रोड कराने के बाद आपको ऐसी अंदर में खुशी होगी कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। तो ये छोटे छोटे पुण्य कार्य भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही वो तो दुनियावी बात है, वो तो हमको करना ही है, लेकिन आप जहां भी रहते हैं, जिनके भी संपर्क में रहते हैं, उनको यदि ज्ञानी हैं तो मुरली की दो पॉइंट प्यार से सुना देवे। अगर ज्ञानी नहीं है आपके संपर्क में आने वाले, उनको बाबा के परिचय की बहुत नम्रता से दो बात भी आप सुनाएंगे ना, एक तो उसको अंदर गुड फील होगा, उसको तो होगा ही होगा, लेकिन हमको स्वयं को भी गुड फील होगा और ये बहुत जरूरी है। तो अंदर से क्या निकलेगा, वह मेरा पुरुषार्थ वह, क्योंकि जब तक पुरुषार्थ श्रेष्ठ नहीं है ना तब तक अपने लिए भी वह वह नहीं निकलेगी। तो इसीलिए पुरुषार्थ को भी श्रेष्ठ बनाना ये बहुत जरूरी है। मुझे याद है मैं शिमला में थी तो दो बड़ी बहनें थी हमारे साथ, हम दो छोटी बहनें थी। तो बड़ी बहनों का तो कारोबार स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं, सेवा केंद्र की पूरी जवाबदारियां होती है, बहुत कारोबार होता है उनका। छोटी बहनों के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ स्थूल सेवाएं या जो भी सेवा मिलती है वो कर लेते हैं, हल्का रहते हैं एकदम। तो एक दिन मैं वहां पर म्यूजियम के बाहर में झाड़ू पोछा कर रही थी, तो वहां एक भाई थे, रेवादास भाई जी, शिमला के, बहुत अच्छे लेख भी लिखते वो हिंदी ज्ञान अमृत में। तो ऑफिस जाते समय वो हमेशा सेंटर पर आते थे, जो भी कुछ ऑफिस का कारोबार हो, सेंटर का ऑफिशियल कारोबार, वो सारा वो करते थे बैठ करके। तो जब वो वापस जा रहे थे अपनी ऑफिस में, तो मैं बाहर पोछा लगाने में मगन थी, तो थोड़ी देर रुके और मुझे कहा, अरे बहन जी, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर के या पोछा लगाने आई हो? बहने तो बैठी आराम से अंदर। मैंने एक मिनट उस भाई को देखा, उस भाई ने ये शब्द कहा, क्या आप इनकी नौकर हो? ये शब्द उसने यूज किया। मैंने एक सेकेंड उसको ध्यान से देखा, दृष्टि दी और फिर मैंने उसको रेस्पॉन्स किया, भैया आप तो कौरव गवर्नमेंट के नौकर हैं, मैं तो यहां पांडव गवर्नमेंट की नौकर हूं, तो किसकी पोस्ट बड़ी, आपकी या मेरी? चुपचाप चला गया, फिर बोला ही नहीं। शाम को आकर के हमारी जो बड़ी बहन थी अरुणा बहन, उसको बोलता है कि आज बहन जी ने मुझे बड़ा जवाब दे दिया। बहन जी उसको जानती थी कि तुमने कुछ कहा होगा इसको, ऐसे जवाब नहीं दे सकती है वो। तो हंसने लगा कि बहन जी मैं इसके मन की परीक्षा ले रहा था कि बहन यहां झाड़ू पोछा कर रही है तो इसके मन की स्थिति क्या है। कहने का तात्पर्य, बाबा के यज्ञ में हमको कोई भी सेवा मिलती है हम बहुत नसीबदार हैं। सेवा का महत्व नहीं है कि वो भाषण करने की सेवा है या बासन मांझने की सेवा है, दोनों इक्वल हैं। कब? जब हमारी मनोस्थिति श्रेष्ठ रहती है। यदि हम बर्तन मांझते हुए या पोछा लगाते हुए हमारे मन का चिंतन श्रेष्ठ चल रहा है, हमारे मन की स्थिति श्रेष्ठ है, तो वो हमारा भाग्य जमा होता जा रहा है। हम भाषण कर रहे हैं लेकिन मन की स्थिति कहां ईर्ष्या द्वेष कंपटीशन में चल रही है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। तो हम वह वह बोल ही नहीं सकते हैं, अंदर से निकलेगा ही नहीं वह वह। तो कहने का तात्पर्य, सबसे पहले तो हम अपने आप को एप्रिसिएट करना सीखें और उसके लिए हम पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना सीखें। जितनी भी बाबा की 69 से अव्यक्त मुरलियां चली हैं, हम यदि एक एक मुरली का हर रोज अध्ययन करते हैं, पूरी मुरली ना भी कर सको, कम से कम एक पेज, जैसे गीता पाठी होते हैं, भागवत रामायण पढ़ने वाले होते हैं, वो कैसे नियमित पाठ करते हैं। तो हम सभी क्लास तो रोज करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए और क्या करें? अव्यक्त मुरली का एक पेज भी रोज बड़े ध्यान से और बोल करके ये पढ़ना जरूर शुरू कर दें। काफी भाई बहने पढ़ते भी हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो आंतरिक चिंतन है वो परिवर्तन होता जाएगा। क्योंकि कई कहते हैं बहन जी हम समझते हैं, मुझे वेस्ट नहीं सोचना चाहिए, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ये नॉलेज तो है, लेकिन क्या करें, इतना तो नेगेटिव हमको घेर लेता है ना कि बस हम उसमें फंस जाते हैं। तो उससे निकलने के लिए हमको अव्यक्त मुरली का अध्ययन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो हम रोज की मुरली सुनते हैं बाबा के घर में जाकर के, या कोई बहुत दूर है, वाहन की असुविधा है, तो कई यूट्यूब पर भी सुनते हैं, तो मुरली सुनने के पश्चात कभी भी कम से कम 15 मिनट तक किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस मुरली का इफेक्ट गायब हो जाएगा। जो आपने मुरली सुनी है उसका अंदर अंदर चिंतन चलता रहे, और इसीलिए साकार बाबा भी देखो, मुरली के पश्चात कई बार बच्चों को सैर कराने के लिए ले जाते थे, और कई बार बाबा कहते थे बच्चे ये सब छतें पड़ी हुई हैं, तब तो ट्रेनिंग सेंटर था, अभी तो सोलार लग गया है, तब तो बंबई चलता था गर्म पानी का, तो बाबा कहते थे छत पर चले जाओ, अकेले अकेले मुरली का चिंतन करो, जो भक्ति में कहते हैं ना चिंतन में ले लो राम, क्योंकि जो हमारे चिंतन में है ना वो हमारे वचन में आता है। कई माताएं भी ऐसे बोलती हैं, बहन जी ज्ञान तो बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, सब ज्ञान हमको अच्छी तरह समझ आता है, मुरली भी समझ आती, परंतु दूसरों को सुना नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुना सकते हैं? जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा ना। तो हम जितना मुरली का चिंतन करेंगे तो हमारे वचन में आएगा ही, हम किसी को सुनाने के बिना रह ही नहीं सकेंगे। एक टैक्सी ड्राइवर था, एयरपोर्ट से लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाता था। तो एक दिन एक उसको मुसाफिर मिला जिसने उसकी टैक्सी हायर की, बहुत रिस्पेक्ट देता था सभी को। तो पहले तो टैक्सी वाले ने उसका सामान गाड़ी में रखा, फिर वो टैक्सी में बैठा, उसका दरवाजा बंद किया, फिर खुद आकर के सीट पर बैठा और बोला साहब आप क्या सुनना पसंद करेंगे, क्या कोई म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे, या कोई आप ऐसी कोई आध्यात्मिक बात सुनना पसंद करेंगे? तो उस मुसाफिर ने कहा कि मैं आध्यात्मिक बात सुनना पसंद करूंगा। उसने सोचा कोई रिकॉर्डिंग लगा देगा ये, तो उसने टैक्सी चालू की और साथ साथ वो किसी सत्संग में जाता था गुरु के, और जो वो सुनकर के आता था वो किसी ना किसी के साथ शेयर करता था। तो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाना शुरू कर दिया, और जब उसका स्थान आ गया तो वो भाई नीचे उतरा, उसने कहा थैंक्स, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, आप बहुत ज्ञानी हैं। उसने कहा नहीं भाई साहब, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो जो गुरु का सुन के आया वो आपको सुनाया, मैं तो मेरा रिवाइज कर रहा था। कहने का तात्पर्य भगवान के महावाक्य जो हम सुनते हैं वो किसी ना किसी के साथ शेयर अवश्य करें, मन की दूसरे को भी सुनाए, तो वो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारे चिंतन में वो बातें आती जाएंगी, और जब दूसरा व्यक्ति इन बातों को सुन करके एक शांति की फीलिंग में आएगा, खुश होगा, तो हमको क्या मिलेगा? हमने जो दिया वही तो हमको रिटर्न में मिलेगा ना, तो फिर हमारे दिल से क्या निकलेगा? वह बाबा वह, कि बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, तो फिर वह वह निकलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है, और जब वो घटना घटती है ना तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। यूं तो हम भक्ति मार्ग में भी गीता सुनते आए और गीता में पढ़ते भी आए। क्या जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वो तो और भी अच्छा होगा। लेकिन हमने सिर्फ पढ़ा सुना लेकिन उसको चिंतन में नहीं लाए, उसको अभ्यास में नहीं लाए। उसके लिए फिर बाबा ने अभी हम बच्चों को ये ड्रामा का ज्ञान दिया। ड्रामा में जो भी कुछ होता है कल्याणकारी होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी। वर्तमान समय को हम देख लेते हैं लेकिन तीनों कालों को हम लोग नहीं देख पाते हैं। बाबा तीनों कालों को देख करके बात करता है और कुछ भी होता है तो हम कई बार बाबा को भी दोष देते हैं। बाबा मैं तो आपका इतना पक्का बच्चा हूँ, पूरी धारणाओं में चलता हूँ, पूरा जीवन मैंने आपकी सेवा में दिया है, मैंने लौकिक लोक लाज कुल मर्यादा भी आपके खातिर छोड़ी है, फिर भी आप मेरी संभाल नहीं करते हो, फिर भी मेरे जीवन में ऐसी घटना, चाहे लोगों के द्वारा कोई परिस्थिति आई हो, चाहे प्रकृति के द्वारा आई हो, चाहे मेरे शरीर के द्वारा आई हो। तो कभी भी देखिए इस शरीर के द्वारा आई हुई परिस्थिति में हम अपने शरीर को भी दोष ना दें। उम्र उम्र का काम कई बार करती है। हम 50 वर्ष के 60 वर्ष के 70 वर्ष के होते हैं तो कभी घुटनों में, कभी कमर में, कभी मणके में, कहां भी दर्द होता है। तो फिर हम बाबा को शिकायत करते हैं, फिर हम उस घुटने को भी बड़ी ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि मेरे घुटने क्यों ठीक नहीं चल रहे हैं। अब देखिए इन घुटनों ने अथवा इस शरीर ने हमको एकदम बचपन से लेकर के इतने 40, 50, 60, 70 वर्ष तक हमको इतना सहयोग दिया है तो हमको क्या करना चाहिए? इनको बड़े प्यार से सहलाना चाहिए, प्यार से देखना चाहिए, इसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि तुमने आज तक मेरे को कितना कोऑपरेट किया है। मैं आशा रखता हूं आप आगे भी मुझे कोऑपरेट करते रहेंगे। तो प्यार से शरीर को भी सकाश दो, इसका दोष नहीं निकालो, नहीं तो ये ज्यादा उपद्रवी बन जाएगा। तो कहने का भाव इस शरीर से आई हुई परिस्थिति में भी अपने मन की स्थिति को हम श्रेष्ठ रखेंगे तो इस शरीर के लिए भी क्या निकलेगा? वह मेरा शरीर वह कितना अच्छा है जिससे हम इतनी तपस्या कर रहे हैं। अगर ये साथ ना देता तो हम तपस्या कैसे करते? बाबा जानी जाननहार है। हम कई बार किसी परिस्थिति में थोड़ा हिल जाते हैं। देखिए मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूं। लौकिक पिताजी जिसको दिल्ली में तो पुराने भाई बहने सभी जानते, त्यागी जी, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने 102 वर्ष की आयु में, तो पहले शक्तिनगर में ही रहते थे लेकिन जगदीश भाई जी ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद वो मधुबन में आ गए। निर्वैर भाई जी ने उनको या मधुबन में बुला लिया था। तो वो बहुत बीमार हुए, उनको अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया अहमदाबाद में, और मैं भी आती जाती रही। और लौकिक बड़ा भाई जो ज्ञान में चलता था मेरठ में, राजेंद्र भाई, तो वो कंटिन्यू एक महीने उनके साथ हॉस्पिटल में रहा। त्यागी जी ठीक तो हो गए, लेकिन वो बेड रीडर थे अभी, क्योंकि चल फिर नहीं सकते थे। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं इनको अब घर लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आप कैसे ले जा सकते हो, ये तो समर्पित है। तो समर्पित आत्मा घर में शरीर छोड़े, ये तो ठीक बात नहीं है। तो भाई ने कहा कि तुमको पता नहीं चलता है। कहता है जब हम छोटे थे ना, हमको कब खाना है, क्या खाना है, कैसे क्या करना है, तो इन्होंने हमारी संभाल की ना, हमको थोड़ी अपना पता था। अब वो समय है जब हमको इनकी संभाल करनी है। मुझे लगा बात तो ठीक है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैं तो सेवा में बिजी रहती हूं, परंतु ये घर जाए या शरीर छोड़े वहां, ये बात मुझे गले उतरती नहीं है। अब आगे बहस तो नहीं कर सकी, बड़े भाई थे। तो 18 जनवरी का दिन था, मैं अमृत वेले 3 बजे बाबा के रूम में गई और मैंने बाबा को सारी बात कह के सुना दी। बाबा ऐसे ऐसे हैं, उनका बेटा उनको अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन मुझे ये संकल्प आता है, ये समर्पित आत्मा घर में शरीर नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा आपको जैसे योग्य लगे। मैं कह करके एकदम निरसंकल्प हो गई, बिल्कुल निरसंकल्प। शाम को बाबा का अवतरण हुआ नीचे डायमंड हॉल में, और बाबा को मिलने के लिए जाना था स्टेज पर। लौकिक पिताजी, लौकिक भाई और मैं तीनों मिलने के लिए गए बाबा को। बाबा ने दृष्टि दी, लौकिक पिताजी को एप्पल दिया, और फिर वो लोग तो निकल गए दृष्टि लेकर के, लेकिन मैं वहां पर ही स्टेज पर बैठी थी। बाबा की मुरली पूरी हो गई, बाबा के जाने का समय था, और हम बाबा के सामने ऐसे स्टेज पर बैठे हुए थे। सब माइक वाइक वीडियो सब हट गया था, बाबा का लास्ट बस जाने का ही समय था, दृष्टि दे रहे थे। और बाबा ने ऐसे किया मेरी तरफ को, मैं तो एकदम खोई हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे बाबा बुला सकता है, संकल्प में भी नहीं था। नीलू बहन कहती है, अरे गीता बहन उठो ना, बाबा आपको बुला रहे हैं। तो मैं उठ करके बाबा के पास गई, बाबा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, अव्यक्त बाप दादा ने, और बाबा ने कहा, बच्ची जो प्लान बनाया है ना, वो एकदम ठीक है, तुम आती जाती रहना, तुम ध्यान रखना। ये क्या था, भगवान जो कहे उसमें अपनी बुद्धि चलाने की होती ही नहीं है। बाबा ने कहा एकदम राइट, और मैं तो एकदम निरसंकल्प थी, परंतु हमने ये अनुभव किया कि बाबा हमारी बात का जवाब भी तब देता है जब हम बाबा को सुना करके एकदम निरसंकल्प हो जाते हैं, हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होती है बाबा के साथ, तो बाबा हमारे संकल्पों को रीड करके हमको आंसर देता है। हमको आंसर लेने की भी जिज्ञासा नहीं रहती है, लेकिन बाबा आंसर देता है। तो जैसे बाबा ने कह भी दिया कि हाँ ये बच्चा भले लेके जाए घर में, मतलब इनडायरेक्टली, और ये भी बाबा ने जैसे कि उस बच्चे की मनोकामना पूरी की अपने पिताजी की सेवा करने की, ये रील बाद में खुली। वो तो लेकर के गया, एक साल खूब दिल जान से उसने बहुत अच्छी तरह से सेवा की, लेकिन एक साल के बाद वो भाई एकदम तंदुरुस्त था, उसने अचानक शरीर छोड़ दिया। अब ये क्या था? जिसको भी समाचार दो तो कि त्यागी जी ने शरीर छोड़ा, कि नहीं नहीं समझाना पड़ता था कि उनके बेटे ने शरीर छोड़ा। तो बाबा त्रिकालदर्शी है कि कैसे उनके बेटे की सेवा की कामना बाबा ने पूरी की। तो क्या निकलेगा दिल से? वह बाबा वह। ऐसा नहीं क्यों शरीर छोड़ दिया, कैसे शरीर छोड़ दिया, नहीं, इसके पीछे कितना गहरा राज था। उस आत्मा को तो जाना ही था, लेकिन उसकी इच्छा बाबा ने पूरी की। तो वह बाबा वह, ये कहने की बात नहीं है लोगों के सामने, ये अंदर से दिल से निकलना चाहिए। किसी ने शरीर छोड़ा, आप कहें वह बाबा वह, तो आपकी बरोबर धुनाई हो जाएगी। तो अब देखिए आगे का ड्रामा कैसे बना। ये ड्रामा कितना वंडरफुल, कितना कल्याणकारी है। उस भाई के भोग लगाने के निमित्त हम यहाँ आए, सभी लौकिक परिवार वाले भाभियां भाई सब आए, बाबा को भोग लगाया। हम जानकी दादी जी से मिल रहे थे, क्योंकि दादी जी का त्यागी जी से बहुत ही गहरा संबंध रहा, और त्यागी जी का भी दादी जी से। तो हम दादी जी से मिल रहे थे, तो दादी ने कहा अभी त्यागी कहाँ है। दादी बहुत अथॉरिटी से और बहुत मीठापन से बात करती थी। हमने कहा अभी छोटा भाई उनको लेकर के गया है। क्यों लेके गया है? क्योंकि दूसरे दोनों भाई ज्ञान में नहीं है, सहयोगी है लेकिन ज्ञान में नहीं है। तो कहा क्यों लेके गया है? मैंने कहा दादी अभी बड़ा भाई नहीं है तो स्वाभाविक है दूसरा भाई संभालेगा। नहीं नहीं, उनको वहां नहीं रखना है। तो मैंने कहा तो दादी क्या करो? तुम्हारे पास लेके आओ। अभी दिल्ली साइड में तो कोई बेटी के पास जाता ही नहीं है, तो कोई भेजने को पसंद ही नहीं करेगा। मैंने कहा दादी वो भाई लोग नहीं भेजेंगे। कैसे नहीं भेजेंगे? वो समर्पित आत्मा है, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, वो यज्ञ में आ रहा है। फिर भाइयों को कैसे भी करके समझाया, वो उनको छोड़ करके गए नवसरी। लेकिन त्यागी जी इतने भाग्यशाली रहे, क्योंकि उन्होंने न रात देखी, न दिन देखा, न भूख देखी, न प्यास देखी, इससे आज्ञाकारी होकर के उन्होंने हमेशा सेवा की। तो बाबा उनको कैसे संभालता है? एक अज्ञानी भाई जिसको चाय का भी व्यसन नहीं, वो हमको अटेंडेंट के रूप में मिल गया, और उसने इतना प्यार से उनकी सेवा की, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ, सिर्फ भोजन बहने कराती थी, और मुझे सेवा में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं थी, क्योंकि त्यागी जी कभी भी मुझे बेटी के रूप से देखा ही नहीं था। वो बहने पूछती थी ये बेंजी कौन है, तो कहते थे इस सेंटर की बड़ी बहन है। कभी भी उनको ये नहीं था कि ये मेरी बेटी है। तो तो कैसे वो स्वयं नष्टो मोहा रहे और उसके कारण से हम भी नष्टो मोहा रहे। और लास्ट में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मधुबन में थी, मीटिंग चल रही थी अप्रैल मास में और हम मधुबन में थी, हम उस समय सामने भी नहीं थी, और बहनें थी जो सेवा करती थी प्यार से। तो कहने का तात्पर्य, बाबा त्रिकालदर्शी है, इसलिए बाबा ने उस बच्चे की भी आश पूरी की और अपने बच्चे को फिर से अपने घर में ले आया और उसका शरीर बाबा के घर में छूटा। तो क्या कहेंगे इसको, वह ड्रामा वहा, वह बाबा वहा। तो हर बात में इतना गहरा कल्याण समाया हुआ होता है जिसको हम नहीं कई बार देख पाते हैं। यूं तो बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, त्रिनेत्री बनाया है, लेकिन हम कई बार इन दो नेत्रों का ही उपयोग कर लेते हैं, तीसरे नेत्र को हम स्टॉक में रख छोड़ते हैं जिसकी जरूरत है अभी यूज करने की। तो ये ड्रामा हमको समय का भी वार्निंग देता रहता है। पिछले कुछ एक दिनों से बाबा हर रोज मुरली में हमको समय की चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि ये अभी अंतिम समय है, इस संगम युग के घड़ियों को हमको सफल करना है। ये तक है तकदीर बनाने की, अपने श्वास और संकल्प सफल कर भविष्य तस्वीर बनाने की। लेकिन बाबा की मुरलियों के अनुसार, बाबा की आज्ञाओं के अनुसार तदबीर करने की। जितनी हम अपनी तदबीर बनाने के ऊपर ध्यान देंगे उतनी भविष्य तस्वीर हमारी श्रेष्ठ बनती जाएगी। तो अंदर से क्या निकलेगा, वह बाबा वह। क्योंकि ये संगम युग की जो थोड़ी सी घड़ियां हैं, तो देखिए जो दुनियावी घड़ी है इस घड़ी के अंदर भी एक मिनट का काटा है, एक सेकंड का काटा है। तो सेकंड सेकंड घड़ी में क्या हम सुनते हैं, टिक टिक टिक, हर सेकंड टिक टिक टिक, वो हमको संदेश देती है कि जो बीता वो ठीक ठीक ठीक। इसमें क्वेश्चन हम उठा नहीं सकते, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, कल्याणकारी हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम सभी निश्चिंत हैं। जिसको अपना भविष्य स्पष्ट दिखाई देता हो वो हमेशा निश्चिंत रहता है। जिसके मन में आता है क्या होगा, उसमें भी एक भय समाया होता है, एक डर समाया होता है। तो हमको ड्रामा के ऊपर यदि संपूर्ण निश्चय है तो कभी ये नहीं आएगा क्या होगा। तो दिल से क्या होगा, कदम कदम पर, सेकंड सेकंड, वह मेरा भाग्य वह। बोलो तो सही, मुस्कुरा के बोलो ना, वह मेरी तकदीर वह, वह मेरा पुरुषार्थ वह, वह बाबा वह, वह ड्रामा वह, वह संगम युग वह, वह मेरा ये शरीर वह। तो हाय हाय तो कहीं आता ही नहीं है, जब वाह वाह होती है ना, ये खुशी के उद्गार है। जब कोई स्टेज पर अच्छा एक्ट करता है तो उसके लिए क्या होता है? वाह वाह, इससे होता है ना। तो हम भी हमेशा सबके प्रशंसा भी करते चले, अर्थात सभी के गुण देखते चले, कि गुण देखेंगे तो प्रशंसा कर सकेंगे, नहीं तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को कुछ वाह वाह कर सकते हैं, ये तो कैसा है, आपको पता है, मैं इसके सारे जीवन जानता हूं। अरे भाई, अब उसके अंदर कुछ परिवर्तन भी आ गया होगा। वो प्रेजुडाइज माइंड कभी भी नहीं रखो किसी के प्रति भी, हर क्षण परिवर्तन का है। रातों रात किसी के अंदर परिवर्तन आ जाता है, और हमारे पुरुषार्थ को देख करके तो अवश्य ही दूसरे में परिवर्तन आएगा ही। आप क्या खा के आए? कहते हैं खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। अगर मेरा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, अगर मेरी जीवन श्रेष्ठ है, अगर मेरे अंदर से वह वह के उद्गार निकलते हैं, तो सामने वाला क्या करेगा? उसकी भी जीवन श्रेष्ठ हो ही जाएगी, उसके अंदर से भी वह वह के उद्गार अपने आप ही निकलेंगे। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशी आ जाएगी, और खुशी जैसी खुराक नहीं है, फिर खरबूजा खाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप ऐसे खुशी में क्या करेंगे? क्या करेंगे? खग्गिया मारेंगे ऐसे ऐसे, है ना? बाबा ऐसे करके बताता था साकार बाबा, बच्चे खुशी में खग्गिया मारनी चाहिए, क्योंकि बाबा हमेशा बच्चों को बहुत खुश रखता था। एक बार की बात है, बाबा ने कहा कि ये पांडव भवन में ही, कि आज सभी बच्चे सारा दिन रास करेंगे। सब सोच में पड़ गए कि सब डिपार्टमेंट वाले अगर सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? खाना बनाने वालों को खाना तो बनाना पड़ेगा ना, बर्तन साफ करने वालों को बर्तन साफ करने ही पड़ेंगे ना, खाना खाए बिना कैसे चलेगा? लेकिन देखो बाबा का गुह्य रहस्य था। बाबा ने कहा आज सभी बच्चे डांस करेंगे, तो थोड़े ही बाबा के बच्चे होते थे, तो बाबा ने सभी बच्चों के एक एक पैर में घुंघरू बंधवा दिए। अब रूटीन तो जैसे चलनी थी वैसे चलनी ही थी, हर एक डिपार्टमेंट के जो भी सेवाधारी थे वो अपने डिपार्टमेंट में सेवा कर ही रहे थे। अब जैसे ही वो थोड़ा भी हिले चले तो क्या हो, घुंघरू बजे, और घुंघरू बजे तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। तो ऐसे बाबा जो है ना बड़ी युक्तियां रचते थे बच्चों को हमेशा खुश मिजाज प्रसन्न रखते थे। बाबा कभी किसी भी बच्चे के चेहरे पर जरा भी उदासी निराशा देखना पसंद नहीं करते थे। अरे किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हो, स्मृति में तो लाओ, फिर उदासी कहां से आई, फिर निराशा कहां से आई, हताशा कहां से आई, पश्चाताप कहां से आया, फिर हाय हाय कहां से आया, वाय वाय कहां से आया, फिर तो क्या रह गया, वाह बाबा वाह। तो अब इसे क्या करेंगे सभी दिल में करेंगे, तो वो चेहरे से रिफ्लेक्ट होगा, तो सामने वाला जब आपको देखेगा तो उसके अंदर प्रसन्नता आ जाएगी। ओके, ओम शक्ति। Thank you.
खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा।
शांति। हम सभी आदरणीय दीदी जी का कितना दिल से धन्यवाद करें। भगवान की गीता और नवसारी की गीता दीदी ने हम सभी को अनुभव की नई नई बातें सुनाई और सारी की सारी ही सुना डाली। तो वाह दीदी वाह, वाह 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 वाह, थैंक यू।